साद्वैतं सावधूतं पर्यन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सगन ललिता श्री विशाखान्वितं च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुषे देवी प्रणमामि हरि प्रिये वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे हरे नमो विष्णुपादाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी ते नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाशात देवे
सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस बारिश में भी आप लोग यहाँ पे आए हो तो गिव योर एसोसिएशन, अदरवाइज हमें इसे लग रहा था कि इस बारिश में क्लास कैंसिल, पहले तो कैंसिल ही कर देते थे हम लोग, लेकिन हम सोच रहे थे एटलीस्ट नोटिस कोई भी आएगा तो वील हैव सम एसोसिएशन। तो आप लोग इतना एफर्ट डाल के इतना परिश्रम लेके हैं, जो दूसरे दिन जितना परिश्रम करके आप लोग आते हो आज की परिश्रम से ज्यादा है कि नहीं, तो अब उसका वर्थ है कि नहीं आना इतना परिश्रम करके यहाँ पे आके क्लास में। सो वी शुड ट्राई टू सर्व, आई शुड ट्राई टू सर्व इन सच वे दैट एटलीस्ट आपको लगे कि ये वेस्ट तो नहीं है, पर आज यू नो योर एक्सपीरियंस शुड बी समथिंग गुड बेटर देन अदर नॉर्मल डे। पर ये तो पानी में आप लोग बैठे हो अभी कोई नीचे तो गिला तो नहीं है ना,
आराम से बैठे
तो फिर है ना तबीयत ना खराब हो जाए, अगर ऐसे लगे तो फिर हम क्लास को वी कैन एडजर्न, वी कैन है ना स्टॉप कर सकते, इट्स नॉट सो हम लोग कोई मतलब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि मतलब हम करें एट द कॉस्ट ऑफ योर हेल्थ, ठीक है। तो आज हम लोग पिछली बार आज थोड़ा शॉर्ट में कर लेते हैं रीडिंग असाइनमेंट्स वगैरह है ना, शायद नहीं तो बाद में कर लेंगे। तो हम लोग सिक्स्थ कैंटो पढ़ रहे हैं और पिछली बार हमने पढ़ा है
अजामिल जी के बारे में, पढ़ा
अजामिल का। तो आज हम कुछ चैप्टर्स पढ़ेंगे फोर्थ से लेके चार चैप्टर से लेके ट्वेल्थ चैप्टर तक कोशिश करेंगे, फोर्थ से लेके ट्वेल्थ पिछले बार थोड़ा आराम हुआ था ना फर्स्ट चैप्टर जी तो हम थोड़ा सोच रहे पहले चैप्टर का एक ओवरव्यू दे देते हैं। तो पहला जो फोर्थ चैप्टर है वो है हंस गुह्य प्रेयर्स, हंस गुह्य। आपका तबीयत खराब है ना, बैठ पाओगे या फिर नीचे थोड़ा ठंडा है? तो हंस गुह्य प्रेयर्स ये वो प्रेयर है जो जो है दक्ष जो है प्रजापति दक्ष उन्होंने किया था ये प्रेयर्स और उनको ये जो है प्रेयर्स जो किए थे क्योंकि आगे जाके उनको संतान बढ़ाना था। तो ये हंसगुह्य प्रेयर बहुत वंडरफुल प्रेयर्स थे भगवान के प्रति और इससे भगवान प्रसन्न हुए थे और फिर उनको हाँ दिए उनको, बोले कि आगे जाके प्रजनन वो करे, कंटिन्यू करे। तो ये था जो, और वो आ रहे थे प्रचेता, प्रचेता के जो हम पहले छोड़े थे स्टोरी कि प्रचेता की 10 प्रचेता थे और फिर वो गए थे तपस्या करने के लिए
जी, शंकर भगवान ने आकर।
हाँ, तो उनके जो है उनको जो आए थे तो वो जो तपस्या करके आए थे तो हम देखे थे कि पूरा जो ट्रीज वो हो गए थे, है ना, ट्रीज से भर गए थे। तो उनको क्रोध आया था और फिर जो है ट्रीज को उन्होंने खत्म करने का वो किया था, है ना। तो उस समय ब्रह्मा जी आए और उनको कहा कि नहीं, आप जो है ट्रीज को, है ना, आप ट्रीज के शेल्टर में एक कन्या थे जो अप्सरा की कन्या थे उनके साथ, हाँ आप लोग विवाह करो और आगे संतान उत्पन्न होंगे। तो उनसे फिर दक्ष का जन्म हुआ। तो वही दक्ष थे जो स्वयंभू मनु के समय भी वो दक्ष थे जिनके साथ भगवान शिव जी का जो शिव का जो वो हुआ था
विवाह उनकी पुत्री से, हाँ उनकी पुत्री से
शिव जी के साथ जो उनकी कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, है ना। तो वही दक्ष का दोबारा यहाँ पे जन्म हुआ और वही उनको वही सेवा मिला कि प्रजापति का सेवा मिला कि उनको यहाँ पे लिविंग एंटिटीज को क्रिएट करना। तो उसके बाद आगे आता है कि नारद मुनि कर्स्ड बाई प्रजापति दक्ष। तो उसके बाद इस चैप्टर आता है कि कैसे दक्ष जो है ये दक्ष नारद मुनि को कर्स करते हैं, श्राप देते हैं। फिर उसके आगे एक चैप्टर आता है प्रजनी ऑफ डॉटर्स ऑफ दक्ष। तो दक्ष का जो कन्या का आगे जो लिनेज है उनका वंश का, तो उसके वर्णन है। और फिर आते हैं कि इंद्र जो है बृहस्पति को, हाँ प्रति क्या ऑफेंस होता है, इंद्र का ऑफेंस होता है बृहस्पति। एंड देन जो है नारायण कवच शील्ड, तो वो जो है देवता को प्राप्त होता है कि ये नारायण कवच जिससे जो है प्रोटेक्शन होता है। और फिर जो है वृत्रासुर का अपीयरेंस होता है, एंड देन वृत्रासुर और जो है इंद्र का बीच में युद्ध होता है और वृत्रासुर का वंडरफुल क्वालिटीज और वृत्रासुर का जो है देहांत। तो ये आज का टॉपिक। तो मोस्टली जो फोकस है वो वृत्रासुर का क्वालिटीज की और उनके स्टोरी पे। तो हम थोड़ा दक्ष वही दक्ष दोबारा जन्म हुआ उनका। तो जो दक्ष उस समय थे तो सबसे पहले सृष्टि में थे वो स्वयंभू मनु के मनंतर में थे। उसके बाद उनका जब यज्ञ हुआ था और उसके बाद उनको जो है बकरे का सर मिला था, उसके बाद उन्होंने वो शरीर छोड़ा था। उसके बाद उनका दोबारा जन्म हुआ वो चक्षुष मनंतर में, चक्षुष सिक्स मनंतर में, चक्षुष मनंतर में। और फिर वो प्रचेता की पुत्र के रूप में जो जो उसमें है ना 10 प्रचेता की पुत्र के रूप में उनका जन्म हुआ। और फिर उनको फिर वही प्रजापति का उनका सेवा मिला और फिर उन्होंने जो है संतान उत्पन्न। अब तो ये चक्षुष मनंतर की बात है। तो तो ये हंस गुर्ज प्रेयर्स में बहुत सुंदर प्रेयर है और उसमें तो उसमें उस प्रेयर्स में फिर भगवान प्रकट होते हैं, अंशु दुर्य प्रेयर्स के बाद भगवान प्रकट होते हैं और भगवान बताते हैं कि लॉर्ड ब्रह्मा, लॉर्ड शिवा एंड मनुज, ऑल द अदर डेमीगॉड्स इन द हायर प्लेनेटरी सिस्टम एंड यू प्रजापतिस, दक्ष को कहते हैं, हु आर इंक्रीजिंग द पॉपुलेशन, आर वर्किंग फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल लिविंग एंटिटीज, दस यू एक्सपेंशंस ऑफ माई मर्जिनल एनर्जी आर इनकार्नेशन ऑफ माई वेरियस क्वालिटीज। तो वो कह रहे हैं कि आप सब मेरा सर्विस कर रहे हो, भगवान कह रहे हैं कि हाँ, तो एक तरह से आप जो है मेरा क्वालिटीज का जो है इनकार्नेशन हो, आप मेरा क्वालिटीज को रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो तात्पर्य में प्रभुपाद बताते हैं कि लॉर्ड ब्रह्मा है ना और लॉर्ड शिवा दे आर वेरी हाई लेवल। प्रभुपाद लिखते हैं, ऑल दो प्रजापति दक्ष इज नॉट ऑन द सेम लेवल एज लॉर्ड ब्रह्मा एंड लॉर्ड शिवा, ही इज कंपेयर्ड टू देम बिकॉज ही एंगेजेस इन द सर्विस ऑफ द लॉर्ड इन द सर्विस ऑफ द पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हैड। इट इज नॉट दैट लॉर्ड ब्रह्मा इज कंसिडर्ड वेरी ग्रेट व्हाइल एन ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग ट्राइंग टू प्रीच द ग्लोरीज ऑफ द लॉर्ड इज कंसिडर्ड वेरी लो। देयर आर नो सच डिस्टिंक्शंस regardless of whether materially high or materially low, anyone engaged in the service of the Lord is spiritually very dear to him. तो ये भी एक्चुअली बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जनरली हम देखते हैं कि मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू से कभी कभी हमने स्टोरी भी सुना है कि वो जो हनुमान जी का और है ना जो स्मॉल उसका स्क्रेल उसका, तो उससे यही सीखने को मिलता है कि भगवान के लिए वास्तव में एवरी डिवोटी इज वेरी डियर और वो विजन हमें भी डेवलप करनी है। चाहे अगर डिवोटी सिंसियरली सर्विस कर रहा है तो है ना वी शुड सी दैट डिवोटी, एवरी सिंगल डिवोटी is so very dear. It's not only specific to one devotee or another. And it is also said that jab bahut junior devotees ya jo new devotees ya man lijiye jo bhi simple devotee hai is serving and if we give proper respect and which is due for him, Krishna becomes very pleased. To wo jo biased hai kabhi kabhi hamara material point of view se we become biased कि हम देखते हैं कभी जो एजुकेटेड हैं मान लीजिए इंजीनियर है या डॉक्टर हैं वी बिकम बायस्ड कि दे आर वेरी एजुकेटेड एंड दे स्पीक वेरी वेल एंड लाइक वो दैट सम टाइम आई नो वी शुड सी इट शुड नॉट हैम्पर ऑफ कोर्स दैट इज गुड ऑफ कोर्स वी सी दैट इफ डिवोटी इज डूइंग नाइस वी शुड हैव अ रेस्पेक्ट बट इट शुड नॉट वी शुड नॉट बी बायस्ड बेस्ड ऑन दैट तो क्योंकि उस पर फिर हम ऑफेंस कर देते हैं कहीं सारे डिवोटीज को भगवान के लिए तो ऑल आर सेफ एंड एवरी वन कैन बी ट्रेन्ड है ना इन कृष्ण कॉन्शियसनेस एवरी वन कैन बी ट्रेन्ड तो है नहीं तो यहाँ पे भगवान उनको ये कह रहे हैं ओके फिर भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया कि आप जो है ढेर सारा आपको ये शक्ति होगा कि आप ढेर सारे संतान उत्पन्न कर सकते सो यू विल हैव अपॉर्चुनिटी टू प्रोड्यूस सो मेनी चिल्ड्रेन दैट स्पेशल पावर इज गिवन। तो प्रभुपाद उसमें तात्पर्य में लिखते हैं कि वन शुड नॉट थिंक दैट अनलिमिटेड सेक्स फैसिलिटी गिवन बाय द लॉर्ड टू दक्ष इज अ वेरी गुड बेनेडिक्शन। So one should not see कि उनको ये फैसिलिटी कृष्ण ने दिया भगवान ने दिया कि दिस इज योर फैसिलिटी यू कैन डू दैट दिस इज सर्विस एंड फॉर दैट यू विल हैव एक्स्ट्रा पावर टू डू दैट। तो प्रभुपाद सेज कि लॉर्ड ग्रांट किया है उस चीज को लेकिन एक डिवोटी जो है जनरली दे डोंट वांट दे डोंट कंसिडर ऑल्सो कि दिस काइंड ऑफ बेनेडिक्शन जो है is a better benediction. Their main objective is to serve Krishna. Hai na?
लेकिन उसी प्रोसेस से सर्व कर रहे हैं।
हाँ, सो उनको मिला है, लेकिन और कोई डिवोटी ये नहीं सोचे कि ये बेनिफिट अच्छा है और मुझे वो बेनिफिट, ये बेनिडिक्शन मिल जाए कि मैं एंजॉय भी करूं और सर्व भी करूं। तो कहने का ये है, कभी कभी हमारा ऐसा हो जाता है कि कभी भगवान ने किसी को मैटेरियल बेनिडिक्शन देते हैं कि कोई डिवोटी बहुत सक्सेसफुल मैटेरियल लाइफ भी करते हैं, मैटेरियल लाइफ भी लीड करते हैं, बहुत अच्छे से सक्सेसफुल लीड करते हैं, एंड उनकी हो सकता है जो फैमिली है ना, फैमिली मेंबर भी ऑल आर वेरी नाइस, वेरी यू नो हैप्पीली इज डूइंग। और कभी हो सकता है किसी और डिवोटी को ये देख के लगे कि उनको तो बहुत भगवान ने ऐसे दिया कि एंजॉय करके आराम में रह के भक्ति करके जा सकते हैं, तो भक्ति भी कर रहे हैं एंजॉय भी कर रहे हैं। सो हाँ, काश मेरा साथ ऐसा होता। सो प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे कि देट इज नॉट द मेन पॉइंट, कि यू कैन शुड नॉट सी कि अगर गुड मटेरियल बेनिफिट्स मिल रहा है दैट डजंट ओनली सिग्निफाई द कृष्णा मर्सी ओनली इन दैट फॉर्म। एक ही दो जो प्रभु जी का इच्छा है, लेट दैट कृष्णा की इच्छा। किसी का बर्थडे है आज? किसका है?
सुनिधि प्रभु।
सुनिधि प्रभु का
ऑफिस
है। और किसी का
है? पूजा प्रभु का था।
प्रभु जी सुने एक्सेप्ट आई एक्सेप्टेड ओके। तो ये मेन पॉइंट आता है ना, स्पेशली कभी है ना हम देखते हैं या फैमिली मेंबर में भी कभी होता है कि उनका तो इतना अच्छा से, तो उसको हम एज ए कृष्ण की स्पेशल कृपा मान के चल मान लेते हैं कि उनका देखो जॉब भी अच्छा चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, दैट मीन्स कृष्ण इज मोर मर्सीफुल टू हिम देन टू मी। तो दैट इज नॉट द क्राइटेरिया। और प्रभुपाद कह रहे हैं कि उसमें हम देखते हैं कि जब उसमें लॉर्ड शिवा को जो वो मिला था, कर्स मिला था, तो लॉर्ड शिवा टू की डेज ए काइंड ऑफ बेनेडिक्शन की अगर ना मिले तो ही ज्यादा अच्छा, क्योंकि उस चीज से फिर और एंटेंगलमेंट का चांसेस रहता है। तो उनको स्पेशल शक्ति मिला था, एंड देन जो है दक्ष प्रजापति दक्ष वो इतने सारे संतान उत्पन्न कर पाए। ठीक है, जो पहली बार है ना, तो उसमें क्या मिला था कि उनको कोई यज्ञ के वो मिलेगा नहीं, है ना, भाग नहीं मिलेगा, एंड कोई सोचते थे ये तो कर्स है बेसिकली, है ना, तो उनको कुछ भी नहीं मिलेगा, लेकिन लॉर्ड शिवा टूक इट एज ए दिस इज व्हाट डिवोटी वांट्स, कि मुझे ना ही करना पड़े इतना उतना ही अच्छा है। हाँ, ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज। तो उसी तरह कृष्णा मतलब भगवान जो भी देते हैं हमारे लिए, we should consider that as a benediction and best benediction for us. यानी किसी और को मिला कुछ material benefit भी अगर मिला और हमें नहीं मिला, है ना, तो हम सोचे कि नहीं वो ही best benediction है, और हम सोचे कि जो वो चीज, जब वो चीज हमें मिलेगा तो ही हम सोचे कि हमें कृष्ण कृपा मिला। आप समझ रहे हो पॉइंट को? तो इसी पॉइंट को प्रभुपाद एम्फेसाइज कर रहे हैं कि one should not think that unlimited sex facility given by the Lord to Daksha is a very good benediction. So, the Daksha ka jo hai, uske aage, jab Bhagwan ne unko permission diya, और एक तरह से ऑर्डर दिया कि आप आगे जाके उनको वो कर सकते हैं, आप संतान उत्पन्न कीजिए, तो सबसे पहले प्रजापति दक्ष जो है, है ना, ही वी गॉट 10,000 सन्स इन द वूम्ब ऑफ अशिकनी जो उनकी वाइफ थे। द सन्स वेयर कॉल्ड हरियश्यस, तो उन सारे पुत्र का नाम था हरियश्य। तो ये जो है ये 10,000 पुत्र का उन्होंने जन्म दिया। तो कभी आश्चर्य लग सकता है नहीं कि 10,000 पुत्र, हाँ,
एक पुत्र दो पुत्र का लिया है ना, हम सोचते हैं कि है ना पॉसिबल नहीं होते है ना, डिफिकल्ट होते हैं। तो 10,000 पुत्र को कैसे जन्म लिया होगा, कितना पावर होगा है ना, और लग सकता है कि ये असंभव है। तो शास्त्र का कभी कभी हम समझ नहीं पाते हैं, पर प्रभुपाद कहते हैं कि ये असंभव, कोई भी चीज असंभव है, ये हमारा नॉलेज लिमिटेड है, हमारा नॉलेज लिमिटेड है। जैसे नॉर्मली एक हनी भी होते हैं, तो हनी भी स्टडी के एक हनी भी जो क्वीन है वो 1,000,000 एग्स वो कर सकते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं 1,000,000। तो 1,000,000 कितना, 10 लाख। तो अगर एक हनी भी क्वीन अगर कर सकते हैं तो प्रजापति दक्ष क्या संभव है, वो तो 10,000 हुआ। तो उन्होंने 10,000 पुत्र का जन्म दिया और उसके बाद उनको कहा कि आप लोग जाके तपस्या करो, आप लोगों को आगे जाके वो करना है ना, संसार को बढ़ाना है। तो ये प्रथा ही होता था कि गृहस्थ आश्रम में जाने से पहले आपको शिक्षा लेनी है, भगवान का भक्ति का शिक्षा लेनी है। तो वो गए और जाके वो लोग जो है तपस्या कर रहे थे, तो उधर वेस्ट साइड में जो जहाँ पे सिंधु रिवर सागर से मिलता है, तो उस जगह पे गए और वहां पे जाके वो तपस्या करने लगे। और फिर जो है वहां पे जब वो बहुत सिंसियरली कर रहे थे तो उनकी हृदय जो है शुद्ध हो गया एक तरह से, है ना, मेटेरियल लाइफ में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। तो जब उन्होंने नारद मुनि देखा कि दे आर वेरी सीरियस अबाउट स्पिरिचुअल लाइफ, तो नारद मुनि वहां पे टू गिव स्पेशल ब्लेसिंग्स, नारद मुनि वहां पे पहुंचे और वहां पे पहुंच के वो उनको कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, नारद मुनि कह रहे उनके, माई डियर हरियश्यस, यू हैव नॉट सीन द एक्सट्रीमिटीज ऑफ दिस अर्थ। इस अर्थ की जो कठोरता, मतलब एक्सट्रीमिटीज जो कितना पेनफुल है, उसको आपने देखा नहीं, तुम लोगों ने देखा नहीं, तुम लोग अभी ब्रह्मचारी हो। और तो कहने का मतलब है तुम लोग अभी गृहस्थाश्रम में जाने का सोच रहे हो, मतलब लेकिन तुम लोगों ने देखा नहीं उसका क्या है, उसका तुम्हारा अंदाजा भी नहीं है उसमें क्या है ना। यू हैव नॉट सीन द एक्सट्रीमिटीज ऑफ द अर्थ, देयर इज अ किंगडम वेयर ओनली, ओके ये वो भगवान के बारे में बोल रहे हैं कि देयर इज अ किंगडम वेयर ओनली वन मैन लिव्स एंड वेयर देयर इज अ होल फ्रॉम व्हिच हैविंग एंटर्ड नो वन इमर्जेस, ए वुमन देयर who is extremely unchaste adorns herself with various attractive dress and the man who lives there is her husband. In that kingdom there is a river flowing in both direction, a wonderful home made of 25 materials, a swan that vibrates various sounds and an automatically revolving object made of sharp razors and thunderbolts. You have not seen all this and therefore you are inexperienced boys without advanced knowledge. How then will you create progeny? तो उसमें मतलब सारे पूरा आगे जाके उसका एक्सप्लेनेशन है कि तो कुछ तो वो यहाँ पे जो किंगडम बात करे कि वन मैन इज भगवान के बारे में कि भगवान जो है इज द ओनली वन पुरुष एंड जो भगवान की धाम में जाते हैं वो वापस नहीं आते इस संसार में. लेकिन इस संसार में जो है यहाँ पे स्त्री के बारे में वर्णन करते हैं और वर्णन करते हैं कि जो ये जो टाइम है काल चक्र वो इतना स्ट्रांग है वो रेजर जैसे है और उसको पेन कर देता है सबको और सारी चीज उस काल चक्र जो है छीन के ले जाता है और कोई भी चीज उसका अपने पास रहता नहीं है और इस काल का चक्र में पड़ जाता है. तो हाँ और फिर वो कह रहे हैं कि तो इस तरह से नारद मुनि उनको इंस्ट्रक्शन दिया और तो वो जो है फिर आगे एक्सप्लेनेशन है कि वो एक एक चीज को कैसे समझ रहे हैं कि वहां पे ऐसे नदी है इस संसार में जो दोनों तरफ बहती है. तो वो कौन सा है कि दोनों तरफ बहती है वो ड्यूअलिज्म है कभी ठंडा कभी गर्म सुख या दुख. तो ये जो ड्यूअलिटी है इस मेटेरियल वर्ल्ड उस पे सब बहता चला जाता है. तो नारद मुनि के इस इंस्ट्रक्शन को वो जो 10,000 पुत्र थे ना उनका दक्ष का तो उन सब ने उस पे विचार किया कि क्या उन्होंने कहा ये तो एक एक चीज को उनको पूरा समझ में आ रहा है कि इसका मतलब ये इसका मतलब ये. और फिर इसको समझ के दे एक्सेप्ट नारद मुनि स्पिरिचुअल मास्टर कि ये यू आर आवर स्पिरिचुअल मास्टर एंड विल फॉलो व्हाट यू से. तो जस्ट नारद मुनि का थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन जो है वो उनको सुन के उनको समझ में आ गया कि ही इज द वन हु कैन गाइड अस. इतना लोगों का इतना बातें सुनते हैं लेकिन जो जेन्युइन स्पिरिचुअल मास्टर है उनके अगर थोड़ा सा भी शब्द हम सुन लें तो हमें समझ में आ जाता है कि हाँ ये जो है ये ही रियल चीज है. तो जैसे प्रभुपाद के समय होता था कि प्रभुपाद कई लोग आते थे वो कितने जगह कितने रिलीजियस प्रोग्राम को अटेंड कर चुके होते हैं और जब प्रभुपाद की उसमें आके बैठ रहे होते हैं कभी एक आंसर का प्रभुपाद का समझ में आ जाता कि ही इज माय स्पिरिचुअल मास्टर एंड वो पूरा जीवन एक स्टेटमेंट पे ही सरेंडर कर देते. तो देट इज द पावर ऑफ कृष्णस डिवोटीज प्योर डिवोटीज. तो उनकी एक स्टेटमेंट एक वर्ड हमारा लाइफ को पूरा ही चेंज कर सकता है और उसको छोड़कर और कहां पे ये चीज मिल सकता है. सो पावरफुल. तो उनके सारे के सारे सब लोग जो हैं एक्सेप्ट कर लिए कि नारद मुनि ही इज आवर स्पिरिचुअल मास्टर एंड देन दे फॉलोड हिज इंस्ट्रक्शंस एंड दे डिड नॉट रिटर्न बैक वापस नहीं आए. और तो दक्ष जो है उनको समझ में पता लगा जब उन्होंने पहले सोचा कि कहां गए तो कहीं सोर्स से उनको पता लगा ये ऐसा हुआ कि नारद मुनि ने उनको समझाया और ये लोग नहीं आया. तो उन्होंने प्रयास भी नहीं किया फिर उनको ढूंढने के लिए क्योंकि ढूंढ के मिलते ही नहीं वो तो दे हैव गॉन. फिर दक्ष जो है फिर दोबारा फिर उन्होंने प्रयास किया प्रजनी तो बढ़ाना है आगे. तो उन्होंने फिर जो है फिर से 10,000 पुत्र का जन्म दिया. तो जो सेकेंड सेट ऑफ सन्स थे 10,000 उनका नाम था शवलश्यस. तो पहले था हरियश्यस और ये है शवलश्यस. तो उनको भी फिर जो है दक्ष प्रजापति ने उनको भी फिर से मैं जो गृहस्थ आश्रम के लिए प्रिपेयर करने के लिए वहां पे फिर से भेजा कि आप जाइए और है ना तपस्या कीजिए। तो वो लोग फिर उसी जगह पे उनकी ब्रदर्स को फॉलो करते हुए वहां पे पहुंचे और वहां पे जाके उसी प्रोसेस से वो तपस्या कर रहे थे। और जब उनका सिंसियर हाँ डिजायर देखा नारद मुनि ने, तो नारद मुनि वहां पे फिर से गए, है ना। तो अब ये चीज जो है ना कि नारद मुनि ये नहीं कंसिडर की कि जो है ना दक्ष क्या सोचेंगे, है ना, अगर इतना सोचेंगे तो प्रीचिंग नहीं हो पाएगा, है ना है ना। एंड कहीं जो है मतलब क्योंकि दे आर मर्सीफुल टू द इंडिविजुअल सोल्स, तो दोस सोल्स जब देखे कि वो दे आर सिंसियर, दे आर डिजायरिंग, दे डिजर्व दिस इंस्ट्रक्शन, दे डिजर्व द गाइडेंस ऑफ नारद मुनि, सो एट द कॉस्ट ऑफ हिज ओन काइंड ऑफ से रेपुटेशन और रिलेशनशिप विद दक्ष, नारद मुनि टुक रिस्क एंड वेंट देयर एंड उनको वंचित नहीं किया और उनको जाके भी उन्होंने वही इंस्ट्रक्शन दिया। और तो उसके बाद फिर जो है दे ऑल्सो फॉलो द सेम थिंग, दे ऑल्सो अंडरस्टूड दैट नो नारद मुनि कहा कि वही है ना सही है और हमें इस गृहस्थ आश्रम में और मतलब मैरिड लाइफ में क्यों प्रवेश करना है। सो दे ऑल्सो वेंट अवे एंड देन डिड नॉट रिटर्न। तो उसके बाद so when Daksha heard this news which was brought to him by Narad Muni, he began to lament. Ab yahan pe Narad Muni, although he was the father of such good sons, he had lost all them, certainly it was lamentable. When Prajapati Daksha was lamenting for his lost children, Lord Brahma pacified him with instructions, and thereafter the So when he heard that the Shavalashas had also left this world to engage in devotional service, Daksha was angry at Narad and he almost fainted due to lamentation. When Daksha met Narada, Daksha's lips began trembling in anger and he spoke as follows. तो नारद मुनि से क्यों मिले पता है आपको प्रभुपाद लिखते हैं कि शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कमेंट्स दैट नारद मुनि हैड डिलीवर्ड द एंटायर फैमिली ऑफ स्वयंभू मनु बिगिनिंग विद प्रियव्रत एंड उत्तानुपाद, ही हैड डिलीवर्ड उत्तानुपाद सन ध्रुव एंड हैड बीन डिलीवर्ड प्रचिनाबरी हु वाज एंगेज इन फ्रूटिव एक्टिविटीज, आपको याद है ना फ्रूटिव एक्टिविटी, तो वहां भी पहुंचे। फिर नारद मुनि उनकी जो दक्ष के पुत्र सबको किया है ना सबको डिलीवर किया, आप नारद मुनि को लगा कि दक्ष भी थोड़ा दुखी है तो अभी उनको भी जाके समझा देते हैं प्रचार कर देते हैं, तो ना उनके पास भी पहुंचे अब वो दक्ष जो है उनको देख लिया कि आपने जो है मेरे पुत्र को जो है वो किया और आप यहाँ पे आए मुझे प्रचार करने के लिए, आप दक्ष बिकेम वेरी एंग्री आप देखिए दक्ष जो है कितना स्ट्रांग वर्ड्स बोल रहे हैं नारद मुनि को। प्रजापति दक्ष सेड, एलास नारद मुनि, you wear the dress of a saintly person, but you are not actually a saint. Indeed, although I am now in grihastha life, I am a saintly person. By showing my sons the path of renunciation, you have done me an abominable injustice. So Prajapati Daksha said, my sons were not at all freed from their three debts. Indeed, they did not properly consider their obligations. Narad Muni, O personality of sinful action. Narad Muni ko keh rahe ho, is the personality of sinful actions, sin personified. You have obstructed their progress toward good fortune in this world and the next, because they are still indebted to the saintly persons, the demigods and their father. तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जो मेरा सन जो है, आपने तो इंस्ट्रक्शन दिया वो कि आपके हिसाब से आपने उनको उद्धार किया, लेकिन वो तीन प्रकार की जो ऋण है उनको ही चुकाया नहीं. तीन प्रकार का ऋण क्या है?
संतों का ऋण,
देवताओं की ऋण और पिता पितृ पिता का ऋण, ऋषियों का ऋण, सेंटली पर्सन. इंडेप्टेड टू एवरी वन इज इंडेप्टेड टू सेंटली पर्सन, डेमीगॉड्स एंड फादर, फोर फादर्स. तो ये तीन ऋण हमारा होता है. एंड प्रभुपद लिखते हैं कि कैसे जो है, सो वन मस्ट अंडर गो सेलिबेसी टू क्लियर हिज डेब्ट्स टू द सेंटली पर्सन. तो सेंटली पर्सन का डेट इस तरह से पूरा होता है, किया जाता है सेलिबेसी को पालन करके. ही मस्ट परफॉर्म रिचुअलिस्टिक सेरेमनीज टू क्लियर हिज डेब्ट्स टू द डेमीगॉड्स, एंड ही मस्ट बिगेट चिल्ड्रेन टू बिकम फ्री फ्रॉम हिज डेब्ट्स टू हिज फादर. समझ में आया? सो वन हैज टू बिगेट द चिल्ड्रेन इन ऑर्डर टू रिटर्न द डेब्ट्स ऑफ द फादर, बिकॉज फादर बिगॉट हिम, सो ही हैज टू. समझ रहे पात्रपन को? So that will be there. Huh? So if we have to nullify that debt, we have to produce children. So ये उनको कह रहे हैं कि आपने ऐसे गाइड किया मेरा पुत्र को कि वो डेट से तो मुक्त हो ही नहीं.
One is born with these three debts.
हाँ, one is born with these three debts. तो क्या आंसर है आपका?
विभक्ति करता वो is not.
हाँ, कौन सा था वो श्लोक? हाँ, बहुत सुंदर श्लोक था ना वो. हाँ, रुको, वो श्लोक हम पढ़ते हैं इसमें. हाँ, देवर्षि भूताप नृणाम पितृणाम ना किंकर नायम ऋणी च राजम. ये देवर्षि भूतत्व नृणाम पितृणाम, इन सबका ना किंकर नायम ऋणी च राजम. ये को जो डिवोटी है वो इन तीनों के कोई ऋणी नहीं रहता. कौन? द सर्वात्मना यह शरणम शरणम, जो कृष्ण का जो शरणम है उनका शरण लिया हुआ है, जिनका शरण लेना चाहिए, जो शरण दे सकते हैं उनका शरण जो लिया हुआ है. गतो मुकुंदम परिरीत करता हूं. दिस इज अ वेरी नाइस श्लोक. एक्चुअली हमें ये सब श्लोक याद करना चाहिए. तो देवर्षि भूत इस श्लोक को प्रभुपाद बहुत जगह पे कोट करते हैं.
11.5.41
क्या श्लोक कौन सा? 11.5.41 तो ये है उसका तात्पर्य. तो नॉर्मली मेटेरियलिस्टिक लोग भी यही कहते हैं कि दीज आर माई सन्स ड्यूटीज, दिस इज ड्यूटीज, है ना. हमें भी लग सकता है कि हमारे ये सब ड्यूटीज हैं, पर ये सर्वधर्मान परित्यज्य कहा गया है. तो हायर ड्यूटीज, लेकिन इसको भी हम मिस यूज नहीं कर सकते हैं. जो आप लोगों का गृहस्थ मैनुअल है ना, उसमें भी वो लिखा हुआ है कि मिस यूज नहीं कर सकते हैं कि हम डिवोटी हैं
तो हमारा कोई ऋण नहीं है, प्रोवाइडेड वी आर शरणम शरणम, क्या हम फुल्ली सरेंडर है या सरेंडर होने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। अगर गृहस्थ लाइफ में नहीं गया या संतान उत्पन्न नहीं किया या जो भी है, उसका उद्देश्य क्या, जस्टिफिकेशन क्या है, क्यों नहीं किया, वांट टू सेव टाइम, टू गिव फुल टाइम फुल लाइफ फॉर ओनली फॉर कृष्ण सर्विस, डोंट वांट टू एंगेज इन एनी एक्टिविटी अदर देन कृष्ण सर्विस, तो दैट इफ दैट इज द ऑब्जेक्टिव देन ही हैज टू जस्टिफाई दैट कि हमने वो चीज नहीं किया, तो हमें पूरा समय कृष्ण के सर्विस, कृष्ण के सर्विस को छोड़कर और कुछ सोचना ही नहीं, देन इट इज जस्टिफाइड। इन लोगों ने आराम करेंगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे, सोएंगे, ये करेंगे, कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी है नहीं, तो जहां मर्जी घूमेंगे, जिधर नहीं जाएंगे, अपना पैसा कमाएंगे, खर्च करेंगे, कोई बोलने वाला कुछ नहीं है, अच्छा लाइफ है, गुड लाइफ है, देन वी विल बी इंडेप्टेड। वी हैव टू जस्टिफाई जो हमने जो प्रोसेस लिया, जो पाथ लिया, दैट पाथ को वी हैव टू जस्टिफाई। जिसे कोई बोलते ना कि प्रभुजी मैं आज क्लास में नहीं आऊंगा क्योंकि मेरा कल एग्जाम है या मेरा अगले हफ्ते एग्जाम है, गुड पॉइंट, अब मत आओ, है ना, ये संकीर्तन में नहीं आऊंगा, मेरा वो है, गुड पॉइंट, बट यू मेक श्योर यू जस्टिफाई योर वर्ड्स कि आप नहीं आ रहे हो, पर आप बेस में रह गए या रूम में रह गए, यू स्टडी, बिना स्टडी करके इधर उधर टाइम नहीं वेस्ट करना। आप जिस चीज के लिए नहीं आए हो उस चीज का अच्छा रिजल्ट आपको आना चाहिए, है ना लक्ष्मीनाथ प्रिया प्रभु, है ना। सो ऐसे नहीं चलेगा कि चलो हमें ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, आराम से रहेंगे, है ना, थोड़ा बहुत बेस में जाएंगे, प्रचार करेंगे, बस हो गया, नहीं, वी हैव डेट। सो इफ वी वांट टू बी फ्री फ्रॉम डेट वी हैव टू गिव फुल हार्ट, फुल्ली एंगेज ओनली वन ऑब्जेक्टिव, वी हैव टू जस्टिफाई आवर स्टैंड, नहीं।
मुझे अगर नारद मुनि वहाँ पे भी तो ये कह रहे हैं कि मेटेरियल लाइफ कितना खतरनाक है, तो वहाँ पे मत जाओ, तो वो किसके लिए इंस्पायर कर रहे हैं हमको?
इसलिए कह रहे हैं कि यहाँ पे जाने से आपका नहीं आपका भक्ति के लिए, कृष्ण को सर्व करने का आपके पास समय नहीं रहेगा, उसमें कम रहेगा, देख लो आप रेडी हो कम समय कृष्ण को देने के लिए, या अगर आप ज्यादा समय देना चाहते हो दिस इज द बेस्ट लाइफ।
तो बेसिकली उनको जो धर्म जो किसी भी स्थिति में हम लोग कर सकते हैं उस शिक्षा को, मतलब कह रहे हैं कि अगर आप गृह जीवन में जाएंगे तो आप हो सकता है कि वहाँ पे बहुत सारे वो आ जाए, मतलब दिक्कतें आ जाए, लेकिन वो डरा भी तो रहे हैं।
हाँ तो फैक्ट बता रहे हैं उनको, क्योंकि वो इनोसेंट है, उनको पता नहीं है ना, तो जैसे अगर उनको दो ऑप्शन अगर बताया जाए, दोनों ऑप्शन का बारे में क्लियरली बताया जाए कि इसमें क्या फैसिलिटी है, इसमें क्या डेंजर है, इसमें क्या फैसिलिटी है, क्या डेंजर है, ठीक है, देन ही कैन चूज बेटर। तो नारद मुनि जो फैक्ट है उसको बता रहे हैं, लेकिन पहले उनको ये नॉलेज ही नहीं था कि उसमें क्या होगा, गृहस्थाश्रम में क्या है, क्या डिफिकल्टी आ सकता है, तो जब उनको ये पता चला देन यू टू कि मेरे को जाना ही नहीं, आई हैव टू फुल्ली एंगेज इन कृष्ण सर्विस, they took the right decision।
क्योंकि दोनों जो डिजायर था, जैसे एक तो दक्ष महाराज का डिजायर था, वही भगवान के साथ भगवान का आशीर्वाद लेके ही था, यहाँ पे नारद मुनि भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, ये आपस में जो एक अपेरेंट क्लेश है और जिसके कारण दक्ष को गुस्सा, क्योंकि वो भगवान की सेवा करना ही चाह रहे थे।
बिल्कुल, अब उसमें ये भी है ना कि वो देखते हैं कि वो सेवा भी होना है, लेकिन ये सेवा हो सकता कोई और कर सकेगा, इस सेवा के लिए उन्हीं को जरूरत नहीं है। मतलब तो दे कैन डू बोथ द सर्विस, दे कैन डू बोथ द सर्विस, बट व्हाट दे कैन डू मे बी अनदर कैनॉट डू दैट, ठीक है, आप समझ रहे हो। जैसे मान लो यहाँ पे
हम काली बात कर रहे थे, जैसे जीता मित्र प्रभु है ना, प्रभु जी के घर में रूम में डीटीज भी है, तो वो डीटीज की डेकोरेशन भी होती है, माला भी बनाया जाता है, तो उसमें है ना जो माला कौन बनाता है, तो माला जो है और कोई माता जी है या है ना वो बना कर ला, तो चाहे तो प्रभु जी भी बना सकते हैं, ठीक है, प्रभु जी भी माला बना के वो कर सकते हैं सर्विस, लेकिन प्रभु जी ने उसको डेलीगेट कर रखा, क्यों कर रखा है, क्योंकि प्रभु जी जो है लेक्चर का तैयारी कर सकते हैं और उसको जो है वो वहाँ पे भागवतम क्लास भगवद गीता में वो प्रभु जी का वो कंट्रीब्यूशन जो है वो मेन इम्पोर्टेंट है, चाहे प्रभु जी दोनों कर सकते हैं, लेकिन अगर प्रभु जी कहें कि मैं कर लेता हूँ माला ये सर्विस आप उसको कर लो, वो नहीं कर सकते, तो वो इस सर्विस को कर सकते हैं जो प्रभु जी भी कर सकते हैं, लेकिन जो प्रभु जी कर सकते हैं वो नहीं कर सकते, तो इसलिए प्रभु जी ने ये चूज किया है कि इसको इनको दे देते हैं, डेलीगेट करते हैं कि वो भी कृष्ण की सर्विस करे और मैं इस समय में ये चीज करूं, सो दैट इज व्हाट इज द, जब वो देखते हैं गुरु देखते हैं कि उनका पोटेंसी क्या है, एक डिवोटी का क्या पोटेंसी है, उनकी पोटेंसी कैसे जो है मैग्नीफाई हो सकता है, किस जगह पे रह के मैग्नीफाई हो सकता है, एंड देन दे इंस्ट्रक्ट कि आप ये चीज करो, दैट विल मेक योर लाइफ।
उसी प्रकार से प्रभु जी हमारे सिस्टम है, तो उसमें तो हम डिवोटी को पर्सनली पूछते हैं कि व्हाट इज योर डिजायर, हालांकि यहाँ पे आप कह रहे हैं कि गुरु देखेंगे और वो बताएंगे कि उनको ब्रह्मचर्य लाइफ में जाना है या गृहस्थ लाइफ में जाना है, लेकिन जो हमारा सिस्टम है कि अब हम व्यक्तिगत डिजायर पे ज्यादा वो करते हैं,
वो भी इम्पोर्टेंट है ना कि वो करना चाहे तो, पहले तो फर्स्ट ये भी है कि अगर वो नहीं चाहे तो वो करवा ही नहीं सकते, पहले उनकी चाह, जब उनका चाहना है कि मैं दोनों कर सकता हूँ, तो उस केस में फिर मतलब कि कौन सा बेटर है, मतलब एटलीस्ट ही नीड्स गाइडेंस, देन ही नोज कि दिस इज बेटर एंड देन ही टेक्स टू दैट। ठीक है, ओके, उसके आगे तो नारद मुनि को जो है वो काफी मतलब उनको कह रहे हैं सुना रहे हैं है ना, और नारद मुनि सुन रहे हैं बेसिकली, फिर नारद मुनि को कह रहे हैं आगे, इफ यू थिंक दैट सिंपली अवेकनिंग द सेंस ऑफ रिनाउंसिएशन will detach one from the material world, I must say that unless full knowledge is awakened, simply changing dress as you have done cannot possibly bring detachment. Daksh कह रहे हैं, दक्ष महाराज कह रहे हैं कि अगर आप सोच रहे हो कि सिर्फ ड्रेस चेंज करने से वो लिबरेट हो जाएंगे तो वो सही नहीं है, मेरा ख्याल से तो वो सही नहीं है, मेरा नॉलेज के हिसाब से बिना रियलाइजेशन के या बिना नॉलेज के सिर्फ रिनाउंसिएशन जो है वो ड्राई रिनाउंसिएशन है और जो है आर्टिफिशियल रिनाउंसिएशन है, एंड दिस वे इट विल नॉट डिटैच समवन, विल नॉट मेक एनी गुड टू समवन, सिंपली ड्रेस चेंज करने से उनकी एलिवेशन नहीं होती, तो इस पे क्या कहना है आप लोगों का, जो दक्ष जो है दक्ष महाराज जो कह रहे हैं उनको नारद मुनि को कि जिस तरह से हैं आपने उनको बदल दिया ड्रेस, और उससे मेरा ख्याल से वो उससे सिर्फ ड्रेस चेंज करने से कोई एलिवेटेड नहीं होता, तो उनकी प्रॉपर नॉलेज प्रॉपर जो है रियलाइजेशन होनी चाहिए, तो इस पे क्या कहना है,
यहाँ पर तो कमेंट है कि जैसे वहाँ पर नारद मुनि ने सही किया बताया, लेकिन बट एक्चुअली में जो दक्ष प्रजापति कह रहे हैं वो सही है, भगवद गीता में भी भगवान कृष्ण कहते हैं मिथ्याचारी करके सब बताते समझाते हैं, थोड़ा तो होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर चूंकि नारद मुनि एक शुद्ध भक्त है और शुद्ध भक्त अगर बता रहा है तो सही चीज है।
चलो पूजे प्रभु आपका क्या विचार है इसमें,
वहाँ पे ये कि एक व्यक्ति तो ऐसा हो सकता है जो कन्विक्शन नहीं हुआ हो, पर 10,000 अगर एक साथ हो रहे हैं तो समझ कन्विंस हो चुके हैं, तब वो है ना एक दो को तो हम समझ सकते हैं कि चलो अगर दो चार भी जाए ऐसे दो चार समझ लगा, मतलब कन्विंस हो चुके हैं, वो केवल ड्रेस चेंज नहीं हुई बल्कि वो अंदर से भी चेंज हो चुके
हैं, अंदर से भी चेंज हो चुका है,
मतलब उधर
सिर्फ ड्रेस नहीं चेंज हुआ है। तो यहाँ पे जो दक्ष महाराज जो कह रहे हैं वो पॉइंट वैलिड है
लेकिन
ये पॉइंट वैलिड है। प्रभुपाद तात्पर्य हमें समझाते हैं कि दिस स्टेटमेंट इज वैलिड, पर जो नारद मुनि ने जो उनको कन्वर्ट किया उस पे जो उन्होंने एज्यूम किया कि उनको शायद सिर्फ ड्रेस चेंज कराया, दैट इज नॉट वैलिड। वहां पे नारद मुनि फाउंड ही गेव द टीचिंग्स एंड ही फाउंड दैट दे हैव रियलाइज्ड इट एंड दे आर फुल्ली क्वालिफाइड एंड देन ही मेड इट। नारद मुनि आर्टिफिशियली नहीं बनाया, ठीक है। तो प्रभुपाद तो इसका ये भी है कि हमें एक एक पॉइंट को दक्ष जो बोल रहे हैं हर चीज गलत है ऐसे भी नहीं है, पॉइंट वो बोल रहे हैं लेकिन उनका जो जजमेंट है उस पॉइंट पे जो नारद मुनि का एक्शन पे वो चीज गलत, ठीक है।
बेसिकली ये 10,000 साइंस है, दे आर कृष्णा कॉन्शियस, पहले से भक्ति उनका हृदय में था।
हाँ, पहले भक्ति हृदय में था एंड राधा नारद मुनि को दे आर वेरी ऑलरेडी लाइक नो मैच्योर and they are fully qualified for lifelong Maishtak Brahmachari and so Narad Muni just gave them instructions and then Narad Muni also instruction he gave in a very difficult way in a that statement which we read na, very difficult to understand for someone, say that ki Narad Muni ka jo instruction tha usko samajhna bhi thoda only advanced person can samajh sakta and they understood it and they took that।
ये उनके लिए भी अप्लीकेबल होता है। संन्यास में कल पढ़ रहा था ये थ्री टाइप्स ऑफ रेनन्सिएशन होता है, कर्म संन्यास, ज्ञान संन्यास और भक्ति के संन्यास। समबडी डेवलप्स कृष्णा कॉन्शियसनेस दैट इज गारमेंट एंड देन दैट इज अवेक एंड देन ही रेनन्सिएशन, दैट इज मोस्ट पावरफुल देन अदर टू संन्यास। कर्म संन्यास समबडी गेटिंग डिटैच्ड विद मटेरियल ऑब्जेक्ट्स एंड जस्ट वांट टू टर्न टू संन्यास रेनन्सिएशन एंड अदर थिंग समबडी जस्ट बिकॉज ऑफ नॉलेज ही रीड समथिंग एंड ही इज मोर inspired with that knowledge then he renounces it. But compared to these two, sarma sanyas and gyan sanyas, this bhakti,
yes, that is the most. So theek hai ab yahan pe dekhiye unko jo aaya unko na ye gussa aaya dakshin wo bhi genuine to hai na, unko jo dukh lagta hi hai aur narad muni bhi usko samajh sakte hai ki unko dukh laga hai and I deserve this, पर नारद मुनि कुछ नहीं कहा एंड ही और फिर नारद मुनि को उन्होंने नारद मुनि को कर्ज दिया।
गुस्सा आया ड्यू टू नॉट फुलफिल ऑफ हिज डिजायर और ड्यू टू केयर ऑफ लविंग केयर ऑफ हिज सन्स।
जिससे प्रभुपाद कहते हैं कि उनके आप अगर लविंग केयर ऑफ सन अगर भी है वो भी अगर मानो तो वो भी इन सम लेवल ऑफ इग्नोरेंस। कि क्या प्रभुपाद कहते हैं कि मेटेरियलिस्टिक जो फादर है वो चाहते हैं, वो भी अपने पुत्र को काइंड ऑफ पुत्र का भला चाहते हैं और उनका एक ही डिजायर होगा मेरा पुत्र जो है बड़ा होकर मैरिज करके उनका पूरा सेटल हो जाए, ये देखना चाहते हैं। अगर उसमें थोड़ा बहुत भी इधर उधर हो गया तो वो परेशान हो जाते हैं, है ना। तो प्रभुपाद कहते हैं उनका बस यही रहता है तो उनकी जो केयर उतना में ही लिमिटेड है कि उनकी अपनी नॉलेज के हिसाब से लगता है कि यही जो है पुत्र का असली बेनिफिट है, कल्याण है और इसलिए उसी के लिए पूरा एफर्ट डाल दें। तो यहाँ पे भी ऐसे ही हम सोचते हैं।
थर्ड केस इज ऑल्सो देयर दैट ही इज बिकमिंग ही इज हिंडरिंग इन हिज सर्विस।
हाँ वो भी हो सकता है, वो दोनों मिक्स्ड आप मान के चलो। आप जैसे वो भी होता है आप सर्विस भी आप देखोगे ऐसे भी, मान लो आपने सर्विस के लिए लिया एक डिवोटी को कि कुछ मेरे को कॉल करना आप थोड़ा हेल्प कर देना, कोई और जाना तो ड्रामा है अभी आ जाओ आप को ले लिया आपको क्या आपको गुस्सा आएगा कि मैंने लिया था उन्होंने ले लिया डिवोटी को, है ना। सो
That is also, but that is controllable. You can understand that is also service. Ultimate objective is he should serve, so he is serving. Maybe you are not doing a better service. So service, Jana Abdut Kare service is fine. So Krishna will be happy with whatever ability you have. With that, whatever resource you have, with that, aap kaise kar rahe ho, Krishna will be happy with that. आपसे अगर कोई ले लिया हेल्प मांगा या सम और आधा किसी ने ले लिया आपसे और वो सर्विस करा रहे हैं और आप यहाँ पे मतलब परेशान हो रहे तो वो थोड़ा हो सकता है सही नहीं है, प्लीजिंग ना भी हो. तो दैट इज वन थिंग, मतलब मिक्स्ड आप मान सकते हैं कि वो भी है ये भी है सारे चीज का मिक्स्ड, जितना हमें समझ में आता है ना. इसमें तो बहुत सारे रीजन होते हैं.
गुस्सा होता है, वो गुस्सा तो तभी आता है ना जब हम पर्सनल,
और एफेक्शन के प्रति भी होता है ना, पुत्र के प्रति एफेक्शन है और जो वो भी अटैचमेंट होता है, एफेक्शन होता है, उनको ले लिया तो ना नहीं चाहते थे वैसा हो. तो कह रहे हैं कि यू हैव मेड मी लूज माई सन्स वंस एंड नाउ यू हैव अगेन डन द सेम इनऑस्पिशियस थिंग, देयरफॉर यू आर ए रस्कल हु डज नॉट नो हाउ टू बिहेव टुवर्ड्स अदर्स. यू मे ट्रेवल ऑल ओवर द यूनिवर्स बट आई कर्स यू, you have no residence anywhere. ये उन्होंने कर्ज किया. और प्रभुपाद ने भी बोला था ना कि मेरा भी कहीं डिसाइपल के पिताजी नाराज हुए तो इसलिए मेरे को भी, मैं भी एक जगह पे नहीं रहता हूँ, मैं भी भ्रमण करता रहता हूँ. हाँ सो देट कैन बी देयर, बट नारद मुनि वहाँ पे रहते नहीं होंगे हमेशा. आते दर्शन दे के चले आते होंगे. तो नारद मुनि सुनिए क्या करते हैं. सिंस नारद मुनि इज एन अप्रूव सेंटली पर्सन, व्हेन कर्ज्ड बाय प्रजापति दक्ष ही रिप्लाइड, तद बड़म यस व्हाट यू हैव सेड इज गुड, आई एक्सेप्ट दिस कर्ज. तो ये भी है प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, नहीं ट्रांसलेशन में ही है, ही कुड हैव कर्स्ड प्रजापति दक्ष इन रिटर्न बट बिकॉज ही इज अ टॉलरेंट एंड मर्सीफुल साधु ही टुक नो एक्शन. सो क्या हम कर सकते हैं, जनरली मटेरियल वर्ल्ड में ये चलता है कि आपने मेरे को किया मैं आपको दिखाता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ, आप नहीं जानते मैं क्या कर सकता हूँ. मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, पर डिवोटीज पर बात करते हैं उनके पास इतना शक्ति है, वो ये नहीं दिखाना चाहते वो क्या कर सकते हैं, वो ये कर दे करने जब क्या कृष्ण चाहते हैं एंड व्हाट इज प्लीजिंग टू कृष्ण, बस उस हिसाब से चलते हैं क्या वो कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, डजंट मैटर. तो यहाँ पे अब इस पे अब देखिए कि दक्ष का जो है एक बार ऐसा हुआ फिर दोबारा उनका पुत्र खोया तो उनको नारद मुनि के प्रति एक तरह से क्रोध आया. इस चीज का सिमिलर इंसिडेंट आपको कहीं और याद आता है कि सिमिलर टाइप का इंसिडेंट? हाँ मतलब सेम सिमिलर टाइप का इंसिडेंट कि उनका पहला पुत्र हुआ और फिर ऐसा हुआ फिर दोबारा. हाँ याद करो थोड़ा.
आपको याद द्वारका में भगवान कृष्ण का अर्जुन का
सच्ची माता जो अद्वैताचार्य
से याद नहीं आ रहा आपको? तो उस समय भी सिमिलर इंसिडेंट था ऑलमोस्ट, नहीं याद आया स्टोरी? सुना नहीं आपने? तो जो विश्वरूप चैतन्य महाप्रभु के तो अद्वैताचार्य के संग में आते थे और फिर उन्होंने संन्यास ले ली, सच्ची माता को इतना दुख हुआ और फिर उन्हें फिर भी बहुत मुश्किल से जो आपने आपको संभाला है ना, और उसके बाद जो है फिर चैतन्य महाप्रभु फिर जाना शुरू किया और उसके बाद उनका त्याग शुरू हो गया एक तरह से त्याग. और फिर जो है सती माता को इतना दुख आया दैट इज आउट ऑफ लव, चैतन्य महाप्रभु के प्रति प्रेम के कारण उनको खोना नहीं चाहते थे और सची माता ने जो है उसी तरह से उन्होंने बोला कुछ नहीं है, बस उनका हृदय में आया, उन्हें सोचा था, उन्होंने भी ऐसे ही सोचा था अद्वैत नाम अद्वैत है लेकिन है द्वैत.
एंड फाइनली चैतन्य महाप्रभु है ना जो है फाइनली टू संन्यास एंड प्रभुपाद बताते हैं कि जो ये जो कर्स दिया दक्ष ने नारद मुनि को लेकिन दिस डजंट स्टॉप नारद मुनि डजंट स्टॉप बिकॉज ऑफ दैट ही विल कंटिन्यू हिज टीचिंग जो भी आ रहे ना आ रहे दैट नथिंग स्टॉप्स हिम तो इस तरह से जो है ना वेरी वंडरफुल थिंग स्टोरी दोनों हो सकता है मटेरियल भी हो सकता है स्पिरिचुअल अगर बॉडी पे इंटरेस्ट है तो मटेरियल होगा अगर है ना सोल पे है तो स्पिरिचुअल
पुत्र के प्रति अफेक्शन तो ये तो नेचुरली होता है
ना हाँ तो बॉडी लेवल पे है तो लेकिन अफेक्शन अगर सोल लेवल पे है तो यू विल बी हैप्पी कि अगर पुत्र जहाँ पे भी प्रोटेक्शन में है इफ ही इज प्रोटेक्टेड देन यू विल बी हैप्पी नहीं तो अगर पेरेंट जो है ना स्टूडेंट पुत्र को अगर बोर्डिंग में डालता है या किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में हॉस्टल में रहने देता है वो भी तो दूर रहने देता है लेकिन ही फील्स कंफर्टेबल है ना तो सिमिलरली गुरु के घर में भी यू शुड फील कंफर्टेबल ठीक है ओके ओके okay, फिर आगे हमारे पास तो उसके आगे आता है कि इंद्र इज ऑफेंस बृहस्पति तो आपको पता है स्टोरी ऐसे ही कि इंद्र जी वहां पे थे सारे डेमी गॉड्स उनको वो कर रहे थे मतलब सर्व कर रहे थे and there was very nice function और इंद्रा जो है वहाँ पे elevated seat में बैठे हुए थे and along with his wife और उसी समय जो spiritual master है देवताओं के बृहस्पति वो आए तो बृहस्पति कौन है गौरलीला में कौन थे बृहस्पति तो बृहस्पति जब वहाँ पे आए तो जो है उन्होंने खड़े नहीं हुए
रेस्पेक्ट नहीं किया
खड़े भी नहीं हुए सीट से और उन्होंने सीट भी प्रदान नहीं किया मतलब कुछ भी तरीका से उनको रेस्पेक्ट करने में देर कर दी कर नहीं पाए और उस चीज को जब देखा बृहस्पति ने तो उन्होंने वहां पे कर्स नहीं दिया उनको वो सिंपली वहां से चले और जब वो चले गए तब इंद्र जी को रियलाइज हुआ मैंने कुछ गलती किया एंड देन वो जो है शांति नहीं मिल रहा था उनको तो उसमें आता है कि इंद्र थॉट Alas, my spiritual master has become dissatisfied with me, and now I have no means of achieving good fortune. So, although Indra was surrounded by demigods, he could not find peace of mind. Ek minute, hum shlok ko padh lete hain. Although Indra searched vigorously with the assistance of other demigods, he could not find Brihaspati. Oh, Indra फिर search करने चले कि कहाँ है वहाँ पे जाके उनको क्षमा मांगेंगे लेकिन वो बृहस्पति अपने घर चले गए थे उसके बाद उनको मिला ही नहीं वहां से भी वो चले गए थे तो बृहस्पति को पता चल रहा था कि इंद्र आने वाले हैं तो वहां से भी डिसअपीयर हो गया तो इंद्र ढूंढते रहे और उनको मिला नहीं
So although Indra searched vigorously with the assistance of other demigods, he could not find Brihaspati. Then Indra thought, alas, my spiritual master has become dissatisfied with me, and now I have no means of achieving good fortune. Although Indra was surrounded by demigods, he could not find peace in the mind. Very instructive. एक ऑफेंस हुआ है ना, और उनका मन में अभी शांति नहीं है, उनके पास सब कुछ है, वही चीज है जो पहले था, वही चीज है, और पूरा डेमीगॉड्स भी उनको सराउंडेड किया हुआ है, उनके सर्विस भी सब कर सकते हैं, सब कुछ है, फिर भी उनको क्या लग रहा है, समथिंग मिसिंग. और यही हमारा भी है ना लाइफ में, हम फील कर सकते हैं कि अगर हमने किसी डिवोटी को दुख दे दिया या कुछ मतलब किया, तो उसके बाद हमें चाहे सब मिल भी जाता है मान लो, लेकिन फिर भी एक हमारा अंदर वो बना रहता है कि हमने वो चीज कैसे मिलेगा वापस. तो इसलिए बताया जाता है बाकी जो मेटेरियल सक्सेस है या वो सारी चीज सेकेंडरी है, पर रिलेशनशिप विद द डिवोटी, स्पिरिचुअल मास्टर एंड वो सबसे हाईएस्ट चीज है. बाकी चीज ना भी मिले, लेकिन अगर वो चीज जस्ट मिल जाता है, लेकिन वो हमें ज्यादा सेटिस्फेक्शन देगा. लेकिन बाकी चीज मिल जाता है, लेकिन एट द कॉस्ट ऑफ डिससेटिस्फाइंग सम डिवोटी और है ना स्पिरिचुअल मास्टर, उसका कोई मतलब नहीं है. और वो आगे जाके हमें सिर्फ पिंच ही करता रहेगा, वो कभी शांति नहीं दिला सकता. कितना भी अमाउंट, चाहे सब लोग बोलेगा कि आपने जो भी किया क्षमा कर दिया, कोई बात नहीं, इतना होता रहता है, ये छोटे मोटे चीज होते रहते हैं, फिर भी वो सारे चीज आपको कंट्रोल नहीं करेगा, बिकॉज यू नो यू हैव डन समथिंग है ना. तो इसलिए इसमें पढ़ना ही है, तो हमें इसलिए वो केयरफुल नहीं कि किसी का, एक महाराज के शायद आ रहा है, महाराज का ही था, इट इज अगर हमें दो चीज में से यू हैव टू आइदर ब्रेक द हार्ट ऑफ ए डिवोटी और ब्रेक द रूल ऑफ ए टेम्पल और एनी अदर प्लेस, सो से द व्हिच वन वी शुड ब्रेक. इफ वी हैव टू ऑप्शंस, आइदर ब्रेक द हार्ट ऑफ ए डिवोटी और द ब्रेक द रूल ऑफ द प्लेस. So it is, we say that it's better to break the rule of the place, because all the rules are meant for serving the devotee. And of course you have to see that it is a very very kind of very subtlety is there in this statement. Isko generally usme nahi le sakte grass level pe ki chalo hum break kar. So sometimes it happens that we have a rule, we set a rule, है ना, in the like you know प्रसाद देना होगा, जैसे कभी प्रभुपाद की अपीयरेंस डे में होता है प्रसाद सर्विस, कितने बजे से ही स्टार्ट होगा, someone comes then मुझे जल्दी जाना है, I am going, so if you can give some little प्रसाद then it's fine. ऐसे नहीं माता जी, 9 बजे ही होगा, you can go. So there we have to see that this rule, if I follow the rule, of course I have to follow the rule, but we have to, whether we have to do special consideration, a little bit flexible to adjust that devotee's need, to take care of the devotee's need. And this is how it is. और उसके बाद फिर कहानी है कि नहीं मिला उनको, एंड देन ही बिकेम, दे आर बेरेफ्ट ऑफ देयर स्ट्रेंथ, क्योंकि जब स्पिरिचुअल मास्टर प्रसन्न नहीं है तो सारी स्ट्रेंथ खत्म हो जाता है. देन ऑल द डेमन्स टुक द कंट्रोल ऑफ द किंग इंद्रस प्लेस, एंड ऑल द डेमीगॉड्स वेयर शेल्टरलेस. तो उसके बाद
तो इंद्र के कारण सारी देवताओं को फिर तो कष्ट मिल गया,
क्योंकि वो तो किंग थे ना, राजा थे ना, जैसे किंग व्हाट एवर डिसीजन ही हुई थी। तो उसके बाद फिर वो जो है ब्रह्मा जी के पास गए कि हम क्या करें। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि आपको एक स्पिरिचुअल मास्टर चाहिए, एक प्रिस्ट चाहिए आप यज्ञ करने के लिए, तो आप इस प्रिस्ट के पास जाओ। तो वो उनका नाम था शायद विश्वरूप, जिनका जिनको पास भेजा कि ही इज ए क्वालिफाइड पर्सन एंड ही कैन बिकम योर स्पिरिचुअल मास्टर लाइक गाइड एंड ही विल हेल्प यू डू द सेक्रीफाइसेस यज्ञ टू इंक्रीज योर स्ट्रेंथ। तो वहां पे जाते हैं और देखते हैं कि वो तो बहुत छोटे हैं, हाँ हमसे बहुत एज में बहुत छोटे हैं, वो हमको कैसे एज ए डिसाइपल एक्सेप्ट करेंगे। तो वहां पे उनको कह रहे थे कि डेमीगॉड्स सब लोग कि देखिए एज इज नॉट ए मैटर, है ना, तो नॉलेज जो है उसी से ही जो है स्पिरिचुअल मास्टर होते हैं, गाइड होते हैं। सो यू पॉसेस मोर नॉलेज एंड यू हैव द एबिलिटी, तो आप प्लीज कृपा करके हमें एक्सेप्ट कीजिए। तो उन्होंने फिर एक्सेप्ट किया उनको। और उसके बाद ऐसा हुआ कि वो जो थे जो विश्वरूप थे, तो उनका देवता की प्रति भी उनका वो था कॉम्पेशन था और डीमंस की प्रति भी था, दोनों की प्रति उनका वो था, है ना, इन मतलब एफेक्शन। तो जब यज्ञ कर रहे थे तो आधा यज्ञ कर रहे थे इंद्र और देवता की उसके लिए प्रसन्नता के लिए, आधा कर रहे थे डीमंस के लिए। और बाद में ये चीज इंद्र को पता चला, और जब इंद्र को पता चला फिर इंद्र जो है उनको हत्या कर दिया। और उसके बाद फिर जो है उससे उनके पिता को बहुत क्रोध आया कि मेरा पुत्र को है जो शिक्षा दे रहे थे, उनको हेल्प कर रहे थे, उनको उन्होंने हत्या कर दी। तो उन्होंने जो है यज्ञ किया और उस यज्ञ से उन्होंने एक डेमंस उत्पन्न किया जो विल बी है ना क्वालिफाइड टू किल इंद्र। तो वही हुए वृत्रासुर। और उसमें जो यज्ञ के मंत्र में उनका थोड़ा गलती हो गया था, जिसमें उल्टा हो गया कि इंद्र उनको मार दें, तो उसमें फिर वृत्रासुर का जन्म हुआ। और फिर वृत्रासुर जो है इतना स्ट्रांग थे, वो जो है देवता को जो है उन्होंने आक्रमण किया और देवता जो है जितना भी वीपन से उनको अटैक कर रहे हैं वो सारे जो है मतलब खत्म कर दे रहे हैं, कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। फिर वो जो है जाते हैं सारे देवता भगवान के पास कि हम क्या करें। तो उस समय भगवान बताते हैं कि इस वृत्रासुर को वध करने के लिए एक ही वीपन है, और ये वीपन बन सकता है कि एक दधीची मुनि है उनकी हड्डी से। तो इट्स अमेजिंग एग्जांपल कि वो सब जाते हैं दधीची मुनि से ये मांगने के लिए कि आप मर जाओ, आपकी बोन लेके हम अस्त्र करके हम जीतेंगे, फिर हम राज्य करेंगे। ये भगवान की इच्छा है।
मतलब हड्डी से क्या,
क्योंकि उनकी हड्डी जो है अभी हमने मिस कर गया, वो जो नारायण कवच, तो उससे उनका पूरा शक्ति था। तो नारायण कवच जो है वो हर रोज उसको करते थे, तो उसके उससे उनके जो हड्डी है वो इतना प्रोटेक्टिव हो गए थे कि उनको कोई नहीं डिस्टर्ब कर सकता। तो उनका इतना शक्ति थी। तो ये जो स्पेशल शक्ति उनके पास ही था और इसलिए ये चीज भगवान को पता था, इसलिए भगवान ने उनको पास भेजा। हाँ नारायण कवच जो है, ये कवच मतलब वो है प्रोटेक्टिव, हाँ प्रेयर्स है, प्रोटेक्टिव प्रेयर्स है वो। हम वहाँ पे एक वो आता है, एक चैप्टर सी है उसमें, तो हम थोड़ा पढ़ेंगे उसमें अगर होगा तो। उसमें ये है कि और माय लॉर्ड, तो भगवान के अलग अलग नामों से है कि आप मेरा इस चीज का रक्षा करना, आप इस समय मेरा ये चीज का रक्षा करना। तो भगवान से हर सिचुएशन के लिए भगवान को का रक्षा मांग रहे हैं, तो ये प्रार्थना है और ये बहुत प्रोटेक्शन देता है।
तो जो हमारे जैसे टेम्पल में नर्सिंग कवच है, राम रक्षा कवच है,
मैं थोड़ा तो पढ़ता हूँ उसमें ऐसे, है ना, दो तीन श्लोक पढ़ते हैं। ये नारायण कवच है, ये कोई भी पढ़ सकता है इनको। तो ये वही विश्वरूप के पास जब गए थे ना, जब ब्रह्मा जी ने बोला कि उनके पास जाओ वो आपको बताएंगे, तो विश्वरूप ने उनको बताया कि देवी देवता को कि इसको, इससे आपको शक्ति मिलेगा। और उसमें ये सब है कि May the Lord, who assumes the body of a great fish, protect me in the water from the fierce animals that are associated with demigod Varuna. By expanding his illusory energy, the Lord assumed the form of the dwarf Bamana. May Bamana protect me on the land. Since the gigantic form of the Lord Vishwarupa conquers the three worlds, may he protect me in the sky. तो इस तरह से भगवान के अलग अलग रूप जो है से हर जगह पे वो भगवान के ऊपर पूरा तरह से आश्रित है, एक डिवोटी रहना चाहता है, और इसलिए वो भगवान को अलग अलग उसमें भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो दिस इज वेरी नाइस, तो उसमें बहुत सारे डिस्क्रिप्शन है इसमें। और इसी तरह से एक भक्ति तीर्थ महाराज का भी एक प्रेयर है, और वो प्रेयर हमने काफी साल पहले का आया था, तो उसको हम पढ़ के सुना सकते हैं आपको। तो ये प्रेयर भी डिवोटी पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि उससे वो अपने सर्विस कंटिन्यू रह सके, भगवान प्रोटेक्ट करना, और डिवोटी भगवान की प्रोटेक्शन चाहते हैं, ये नेचुरल चीज है, वी वांट भगवान कृष्णस प्रोटेक्शन। तो बहुत सुंदर, आप सुनिए थोड़ा सा स्टार्टिंग में और एंड में पढ़ेंगे, बीच में छोड़। माय डियर लॉर्ड श्याम, इट्स डेली प्रेयर्स। माय डियर लॉर्ड श्याम, प्लीज काइंडली हियर माय क्राई, grant my devotional desires and eliminate my undevotional desires. I am your instrument. Please make me worthy enough to serve you in all circumstances. May the Lord, who is known as Maniman, protect my thighs, protect them from evil, from Maya, and give them protection so that the mind does not allow them to be a source of captivating the opposite sex. इस तरह से बहुत सारे हैं। May Lord Keshava protect my heart. Please Lord, make my heart an eternal dwelling place of the sweet love of the divine couple. Please make my heart an abode of surrender, humility, dedication and selflessness. Make my heart grow only in love of your supreme majesty and allow your pastimes to eternally remain blissful in my heart. May Lord Ishwara protect my head. May he only allow me to use my head in working for his glorification. Bless this low-born head of mine and give me knowledge of how to serve and please you better. May Lord Narayana protect my breath. May he encourage me to only use my breath for appreciating things offered at your divine feet. Dear Lord Krishna, please protect my soul. While sleeping, may Lord Madhava protect me from all dangers. And may the Supreme Personality of Godhead in his Narsingha Rupa form protect me from all evils, all danger, all inauspiciousness and all illusions. Dear Lord, I humbly beg that you daily and eternally hear these my prayers and ultimately make me your useful, dedicated eternal servant and a devoted son of my beloved spiritual master. Om Vishnu Bhagavat Paramahamsa says his divine name Srila Prabhupada. So, it's a daily prayer, you know. So like that, तो उसी तरह वो करके तो आप दधी जी के पास गए और बोले कि आपका हड्डी चाहिए, तो give me in charity. We discuss charity, हाँ. So give me in charity your bones. आप सोचिए कि जितने भी charity हैं उसमें से ये charity कितना महंगा है. But such a great soul, you know. We can do charity as long as it doesn't harm me. As long as I am still happy and I am comfortable. We don't want to give charity which can cause me suffer. Generally, हम जब charity करते हैं, तो हम उतना percent करते हैं जितना हमें comfortably हम कर सकते हैं. हम जब शुरू में थे, तो एक devotee कह रहे थे कि वो हमें प्यूरिफाई नहीं करता, करता है लेकिन उस लेवल पे नहीं है. हमें उतना परसेंट करना चाहिए जो हमें स्लाइटली पिंच करे, जो हमें स्लाइटली पिंच करे उतना परसेंट, जितना परसेंट पे लगता है कि थोड़ा सा ज्यादा हो गया वो हमें पिंच करे एंड दैट विल नहीं. तो कहने का मतलब है कि हम जनरली करना चाहते हैं जिसमें हमें नुकसान ना हो, पर यहां पे हम देखते हैं कि वो देखें उनका क्या नुकसान है, उनकी लाइफ खत्म हो जाता है. एंड इट इज हिम टू डिसाइड वॉलंटरीली, ही कैन रिफ्यूज नो, बट उनके पास ये ऑप्शन है कि आइदर टू हेल्प देम बाय गिविंग अप दिस बॉडी टू हेल्प दिस डेमिगॉड्स और टू कीप हिज बॉडी. तो वहां पे दिस इज द ग्रेटनेस एक्सेप्टेड. तो उसमें ये उनका वो था कि अल्टीमेटली दिस बॉडी इज गोइंग टू फिनिश, सो इफ दिस बॉडी इज ऑफ सम यूज ऑफ यूज लेट मी डू. सो वी ऑल कैन प्रे दैट दिस इज वी कैन लाइक रेस्ट appreciate that. Of course we cannot imitate it, and but he this example remains and kind of outstanding example for all kind of charity jise Bali Maharaj ne diya. So these are charities and there is no comparison of such things. Aur phir unhone phir aur Indra ko bhi ye cheez lena pada. Indra was feeling sorry ki mujhe lena pad raha. But he has to take it. तो उन्हें लेके फिर वो बनाया शस्त्र, हाँ जो थंडरबोल्ट, और फिर जो है उनका साथ वृत्तासुर का साथ युद्ध हो रहा है. अब ये भी बहुत जो है kind of interesting है, वृत्तासुर और इंद्र का जो युद्ध है. तो इंद्र जब आए तो वृत्तासुर इंद्र को कह रहे थे कि देखो है ना, आप फाइट करो, आप फाइट करो और मैं भी आपको फाइट करता हूं आपसे, लेकिन मैं जानता हूं कि आप जीतोगे क्योंकि आपके पास वो थंडरबोल्ट है जो कृष्ण की इच्छा से है, भगवान की इच्छा से है. So, why you are hesitating? Start. है ना, और उनको एनकरेज कर रहे थे एंड ही वाज सेइंग कि दिस इज एन अपॉर्चुनिटी, है ना. तो प्रभुपाद उसमें लिखते हैं, बहुत सुंदर कन्वर्सेशन है कि आई डोंट वांट एनीथिंग विद अशु, कहते हैं कि मैं कोई राज्य भी नहीं चाहता हूँ, ये भी नहीं चाहता हूँ, वो नहीं चाहता हूँ, मैं तो चाहता हूँ कृष्ण का. सो आई वॉन्ट टू गो बैक टू कृष्ण क्विकली एंड एंगेज इन हिज सर्विस, एंगेज इन द सर्विस ऑफ द डिवोटीज. तो उसके बाद इंद्र ने जब उनको फाइट किया तो इंद्र का वो गिर गया था बस वज्र, तो उठा नहीं रहे थे. तो उन्होंने कहा उठाओ और फिर एनकरेज कर रहे थे. और वो भी वित्रसु भी स्वयं भी प्रयास कर रहे थे, पूरा प्रयास. तो यहाँ पे प्रभुपाद बताते हैं कि इट वॉज नॉट दैट वित्रसु गेव अप फाइटिंग. He fought till the last moment because he was there to fight. Although he knew कि नहीं होगा, है ना, जीतेंगे नहीं, knew 100%. लेकिन फिर उन्होंने छोड़ा नहीं, क्योंकि this was his duty, क्योंकि वो fighting में है and he cannot surrender, nor he can flee away. तो उसमें बाकी लोग चले गए थे डेमन्स, पर वो जो है वो लास्ट मोमेंट तक उसको पूरा फाइट के लास्ट मोमेंट.
इसमें भीषण का उदाहरण कैसे देंगे, मतलब कैसे करके, जैसे पिताश्वर को महाभारत है, भीषण भी महाभारत है, भीषण तो छोड़ के आ गए, उनके पक्ष में आ गए. तो ये पिताश्वर क्यों देवता के पक्ष में नहीं आए जब भगवान उनके पक्ष में है?
उनको कहा भी नहीं किसी ने. ठीक है तो अब हम कंटिन्यू करें इसका. तो ये था कि उसके, तो उन्होंने लास्ट मोमेंट तक करा. अब इसमें बहुत कुछ सीखने की चीजें हैं, कि उन्होंने अपनी ड्यूटी जो है रिजल्ट को सोचते हुए ड्यूटी को नहीं छोड़े. अभी फायदा ही नहीं तो क्या क्यों करना है, क्योंकि ही इज देयर इन द बैटल फील्ड जस्ट टू फाइट टू द लास्ट मोमेंट, लास्ट मोमेंट विथ फुल हीरोइज्म, विथ फुल हीरोइज्म ही फॉट. तो उसी तरह जैसे कभी जाते हो गोविंदपुरी, तो बारिश आएगा, अभी पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा. अगर आप जा रहे हो then go with full spirit, कि अगर एक भी आया we have to give our best. हो सकता होने के बाद finally कुछ भी नहीं हुआ है, but still we have to give our best, our duty we have to do. ठीक है, उसके बाद एक श्लोक आता है वित्रसुर कहते हैं, वो बहुत सुंदर है. वो इस प्रकार है श्लोक, ओ लोटस आइड लॉर्ड. वो वित्रसुर भगवान से भी प्रे करते हैं उस समय, तो इंद्र से जब कन्वर्सेशन चल रहा है बीच में, फिर वो भगवान से भी प्रे करते हैं. तो कहते हैं वो लोटस आइड लॉर्ड, एज बेबी बर्ड्स that have not yet developed their wings always look for their mother to return and feed them, as small cubs tied with ropes await anxiously the time of milking when they will be allowed to drink the milk of their mothers, or as a morose wife whose husband is away from home always longs for him to return and satisfy her in all respects. I always yearn for the opportunity to render direct service unto you. तो यहाँ पे तीन एग्जाम्पल दिया है कि कैसे उस एग्जाम्पल में इज द हेल्पलेसली दे वेट और डिपेंड ऑन समवन, हेल्पलेसली डिपेंड कि वी कैनॉट डू एनीथिंग सो वी नीड लुक फॉरवर्ड द मर्सी सो वेन दैट विल कम. सो सिमिलरली अ डिवोटी उस पे राधानाथ महाराज यहाँ पे आए तो इसी पे लेक्चर लिए थे, इसी श्लोक पे. तो कि उसी तरह एक डिवोटी ही अंडरस्टैंड्स दैट इन दिस वर्ल्ड इज फुल्ली हेल्पलेस, वी आर फुल्ली हेल्पलेस एंड देयरफॉर ओनली पर्सन वी कैन लुक मर्सी फ्रॉम इज कृष्ण. एंड डिवोटी फील्स हैप्पी टू फुल्ली रिमेन फुल्ली डिपेंडेंट ऑन कृष्णस मर्सी. So this was the slok and so very nice instructions, bahut kuch sikhne ko milta. So we all pray that all these great souls, great devotees and Prabhupada, and all the our guru varga, they also bless us. These are qualities we can speak, but to implement is very difficult. Like Vritashura is not fearing. He knew that this death is coming and this is the opportunity to meet Krishna. Aur Prabhupada bhi aise the jab wo yuddha ho raha tha Kolkata mein, to Prabhupada was seeing as a Krishna, a form of Krishna. So so therefore these are very मतलब हाई थिंग. सो वी मे प्रे दैट वी मे गेट सम काइंड ऑफ मर्सी, दे ऑल ऑफ देयर मर्सी एंड वी कैन गेट स्ट्रेंथ टू कंटिन्यू आवर सर्विस फॉर द प्लेजर ऑफ गुरु एंड कृष्ण. ओके सो थैंक यू सो मच, वी स्टॉप हियर. सो इन समरी वी सो आज उनका दक्ष महाराज का और नारद मुनि का कर्स एंड देन सौदा वृत्तासुर. किंग इंद्र इज ऑफेंडिंग बृहस्पति देन वृत्तासुर दधीचि मुनि एग्जाम्पल. ओके थैंक यू. कोई क्वेश्चन कमेंट?
जो दक्ष जी है वो इतना रिपेंटेंस भी किए थे, पहली बार गलती किए थे तो इतना पश्चाताप करके इतना उनका प्यूरिफिकेशन भी हो गया था, फिर वो डिवोटी हो गए थे. और फिर मतलब लॉर्ड विष्णु तक आए थे, मतलब जो बाद में सैक्रिफाइस था. तो इतना होने के बाद भी फिर ऐसे कि वो फिर दोबारा वही प्रवृत्ति में चले गए?
दोबारा वो उतना खराब थोड़ी ना, इसमें तो इतना कुछ नहीं हुआ. वो पहले उसके आगे उनका कन्या हुआ, उन्होंने सोचा कि आप पुत्र जन्म करना थोड़ा सही नहीं है, महाराज मुनि ले जाएंगे, तो कन्या जन्म दिया और फिर कन्या से जो है आगे
काफी कन्याएं भी काफी हुई.
तो उसमें कोई इतना कुछ वो नहीं था, इतना ऑफेंसिव नहीं था. महाराज मुनि डिड नॉट टेक इट एज एन ऑफेंस. महाराज मुनि अंडरस्टूड ही, एटलीस्ट ही हैज गिवन सो मेनी सन्स.
तो कृष्णा भी उसको एज एन ऑफेंस नहीं लेते थे, ऐसे कोई बोलता था?
उतना सीरियसली तो नहीं लिया ना उसका
ऑफेंस, तो मतलब लॉर्ड शिव ने भी नहीं लिया था, मतलब फिर भी मतलब ऑफेंस
उसमें वो था, कर्सिंग उस टाइप से था बिल्कुल. उसके बाद सती का ऐसे देहांत हो गया, इट वॉज वेरी वेरी शिवा को आने ही नहीं दे रहे थे काइंड ऑफ, एंड वो सारे थोड़ा वो था द मोड ऑफ पेंशन. ठीक है और कोई कॉमेंट? हाँ हाँ नहीं तो ये सब जो है ना हायर प्रिंसिपल है भक्ति का, कि
कभी कभी भगवान जो है अपनी डिवोटीज को ग्लोरीज को बढ़ाने के लिए डिवोटी को कष्ट देते हैं, हायर प्रिंसिपल है। और भक्त जो है उसको समझ जाता है कि ये जो है कृष्णा आउट ऑफ एफेक्शन दे रहे हैं।
तो प्रभु जी अभी
एंड देयरफॉर ये जो है ये डिवोटीज का उस लेवल का है। और इसलिए जैसे पृथ्वी महाराज का अभी ये हो रहा था कि 99 यज्ञ के बाद आके वो बोल रहे थे कि आप मत करो, ब्रह्मा जी कह रहे कि आप मत करो, तो इस टाइप से है और वो समझ गए थे, तो उससे उनका ग्लोरीज बढ़ता है, इससे वृत्रासुर का ग्लोरीज बढ़ा। कष्ट तो आज का कष्ट कल का कष्ट खत्म हो जाता, पर जो डिवोटी वो समझ सकते हैं ये कृष्णा ये चाहते तो ये होना चाहिए, उसके लिए कुछ भी कष्ट मतलब कुछ भी करना पड़े, तो ये मतलब एक एग्जाम्पल है। वृत्रासुर को पता है कि कृष्णा चाहते हैं कि मैं ना रहूं, मेरा मतलब इस तरह से मेरा शरीर छोड़ना पड़े, ही वॉज हैप्पी कि ऐसे ही हो ऐसे ही हो। तो एक बार हमने सुना था और कई बार डिस्कस किया था कि गौर गोविंद महाराज कहते हैं कि अगर कृष्णा चाहते हैं कि इनका सर काट दिया जाए, अगर आपको किसी आगे बोलता है कि कृष्णा चाहते हैं ऐसा हो तो विल यू बी हैप्पी, तो हम यू आम कंडीशन सोल में है, तो दैट मीन्स वी रियली डोंट वॉन्ट एब्सोल्यूटली कृष्णस प्लेजर, कि कृष्णस प्लेजर ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, तो वो आसान नहीं है, वो हम लोग का स्टेज में नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि हमारा अपना भी कंफर्ट अपना भी चीज रहना चाहिए होता है। तो उसमें वो स्टोरी आता है जब नारद मुनि वो जो डस्ट का बात कर, आता है ना कृष्ण की फीवर है तो कौन जो है कृष्ण को देंगे जो वो है ना, तो कोई नहीं देना चाह रहे थे लेकिन गोपियां देना चाह रहे थे, तो एट द कॉस्ट ऑफ, तो उसने क्यों, क्योंकि उनका जो है एकमात्र इच्छा यही है कि कृष्ण की प्रसन्नता और कुछ भी फैक्टर नहीं है उसमें। तो उसी चीज को गौर गोविंद महाराज एक लेक्चर में कह रहे थे कि अगर कृष्ण कहते कि आपका गला काट दिया जाए तो क्या आप हैप्पीली उसको एक्सेप्ट कर लोगे? अगर इट इज कृष्णस डिजायर जो प्योर डिवोटी है विल बी हैप्पी, कि अगर इस सिंपल इतना करने से कृष्ण खुश हो जाएंगे, सिंपल इतना करने से खुश हो जाएंगे, तो इट्स वेरी इजी प्रोसेस, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट, मतलब जब हम कंडीशन स्टेट में वी कैन नॉट डू इट। तो लेकिन जो डिवोटी उस लेवल पे है दे ओनली कंसर्न इज कृष्णस प्लेजर, दे कैन डू एंड कृष्ण उनके माध्यम से शो करते हैं कि कैसे कैसे डिवोटीज है कृष्ण का हा? जो सब कुछ छोड़ सकते हैं कृष्ण के लिए, एवरीथिंग दे कैन, कृष्णमय मदगत मदगत प्राण मत चित्त मदगत प्राण, तो प्राण कृष्ण में है, प्राण अपने शरीर में है ही नहीं, प्राण कृष्ण में है, तो कृष्ण जो चाहते हैं वो ही, एंड देट इज वट चैतन्य महाप्रभु इज टीचिंग, मतलब है ना कि गोपी का जो लव है उसी अनुगत होके, सो दिस दैट इज एंड दैट इज द लव एंड बाय दैट लव ऑफ कृष्ण कृष्ण इज बाउंड, if someone loves krishna like that krishna is bound by that love, theek hai
kuli wo vritasura jo the unhone matlab fight karne ki koshish ki indra ko lekin bhagwan ka to ichha hi tha ki indra ke paas aise kuch aaye astra hai jisse vritasura ko maar de, lekin vritasura unta lad rahe hain indra ji, तो ऑपोजिट है जो भगवान चाहते हैं,
चाहते युद्ध में हारा है ना उनको इंद्र को, इंद्र युद्ध में हारा है उनको, तो शस्त्र का भी तो वैल्यू तभी पता चलेगा जब युद्ध करेंगे, युद्ध नहीं करेंगे शस्त्र का भी पता नहीं चलेगा।
तो वृत्रासुर जो ऐसे लड़े थे तो इससे कृष्ण प्रसन्न होते अपने ऑक्यूपेशन ड्यूटी के उससे अगर वो ऐसे लड़ते हैं तो इससे कृष्ण प्रसन्न होते हैं
उसकी जैसे मान लो आपका डिबेट है ठीक है,
आपका और प्रभु जी के बीच में डिबेट है, ठीक है, आपको अपने टॉपिक में बोलना है, उनको आपको फॉर्म में बोलना है, उनको एडिस में बोलना है, ठीक है, उनको हमने कुछ हिंट दे दिया कि प्रभु जी आप जो है ये वाला बताना, ठीक है, आपको बताए, उनको गाइड किया जयनारायण प्रभु ने, अब वो तो आप नहीं जीत सकोगे, लेकिन फिर भी डिबेट में आप अच्छे से एंथुसियास्टिकली भाग लोगे या नहीं लोगे?
लेकिन उससे कृष्ण प्रसन्न होंगे,
हो गई मतलब डिबेट हो रहा है और उनको बताया
कृष्ण चाहते हैं दूसरा ऑपोजिट वाले जीते, कृष्ण तो भोगता रहा, लेकिन अगर मैं कोशिश करूँ हराने का तो उससे प्रसन्न होंगे, मैं अपना ड्यूटी के उससे करूँ।
देखो यहाँ पे डिबेट हो रहा है, ठीक है, तो डिबेट में तो आप जब करोगे तभी डिबेट का वैल्यू है, तब जो उन्होंने जो पॉइंट डाला है उस पॉइंट का भी वैल्यू रहेगा। तो इसमें बहुत सारी सटल चीज है, उसको समझना एग्जैक्टली क्या चाहते हैं कृष्ण, वो डिवोटी ही समझ सकता है कि उस पॉइंट पे एग्जैक्टली कृष्ण क्या चाहते हैं, ठीक है, और उसको समझना जो है वो उस डिवोटी ही समझ सकता है कि एग्जैक्टली कृष्ण क्या चाहते हैं। और जी सब सर, ठीक है, सो थैंक यू, और ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, निखाई गौर प्रेमानंद। अब रीडिंग असाइनमेंट दे दीजिएगा, हम लोग ऑफलाइन कर लेंगे यहाँ पे
तो भाव